Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Chit Chaturvidam, Char Chaitanya ho gaye na? Brahma Chaitanya, Ishwar Chaitanya, कूटस्थ चैतन्य, जीव चैतन्य, चार चैतन्य। अब जीव चैतन्य के लिए अंतःकरण की आवश्यकता है, कूटस्थ चैतन्य के लिए अंतःकरण की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर चैतन्य के लिए माया की आवश्यकता है, ब्रह्म चैतन्य के लिए माया की आवश्यकता नहीं है। देख लो, स्पष्ट है ये। ब्रह्म चैतन्य माया के बिना भी वह ब्रह्म चैतन्य है, अंतकरण के बिना भी वह ब्रह्म चैतन्य है, कुटस्थ के बिना भी वह ब्रह्म चैतन्य है। इसीलिए ब्रह्म चैतन्य के लिए और किसी की होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ईश्वर होने के लिए माया की आवश्यकता है और जीव होने के लिए अंतकरण की आवश्यकता है। या दूसरी भाषा में, पंचदशी की भाषा में समझना चाहो, ईश्वर होने के लिए शुद्ध सत्व की आवश्यकता है। पंचदशी की भाषा में समझना चाहो, ईश्वर होने के लिए शुद्ध सत्व की आवश्यकता है और जीव होने के लिए मलिन सत्व की आवश्यकता है। मलिन सत्व न हो तो जीव हो ही नहीं सकता है। इसलिए वेदांत की यह दृष्टिकोण है, जीव हो और वह जीव शुद्ध हो, शुद्ध रूप में रहे, यह संभव ही नहीं है। वेदांत का यह निश्चित है, जीव हो और वह शुद्ध हो, यह संभव नहीं। जीव को चाहे शुद्ध करने के लिए तो उसकी उपाधि जो मलिन सत्व है उसको हटाए बिना जीव शुद्ध नहीं होगा, और मलिन सत्व हटाते ही जीव जीव ही नहीं रहेगा, तो शुद्ध जीव की कल्पना कहां से आ गई तुम्हारी? शुद्ध जीव की कल्पना कहां से आ गई? जीव की जीवपना रहे तब ना उसकी शुद्धता की बात आवे। जीव की जीवपना उपाधि बाधित होते ही वो तो ब्रह्म हो गया, तो जीव की जीवपना ही नहीं रहती है। और जीव को जीव बनाने के लिए उपाधि चाहिए, उपाधि फिर शुद्ध उपाधि जीव की नहीं हो सकती, और शुद्ध उपाधि होते ही वो फिर ईश्वर हो जाएगा। यदि उपाधि को शुद्ध करोगे तो वो फिर जीव नहीं होगा, फिर ईश्वर हो जाएगा वो, क्योंकि शुद्ध उपाधि ईश्वर का है, मलिन उपाधि जीव का है। यही तो जीव और ईश्वर में अंतर का कारण है। यूं तो मूल रूप में चेतना में जीव और ईश्वर में अंतर नहीं है, उपाधि की भिन्नता से जीव और ईश्वर में भिन्नता है। दोनों की उपाधि बात कर देते हैं तो जीव ईश्वर की एकता है, वहां शुद्धता भी नहीं मलिनता भी नहीं। कहां? दोनों की एकता में शुद्धता भी नहीं मलिनता भी नहीं। और जब दोनों को अलग करते हो तो ईश्वर में शुद्धता, जीव में मलिनता, और उसी मलिनता के चलते जीव अनेक प्रकार के पराधीनता, सुख दुखता का अनुभव, जन्म मृत्यु आदि की प्राप्ति। और जीव को उस उपाधि की बात करना ही वेदांत का प्रयोजन है। अस्ति प्रकाशत इति व्यवहार प्रवर्तते, तच्चास्तित्वं प्रकाशत्वं कस्मिन् अर्थे प्रतिष्ठितम्, किं तेषु तेषु सर्वे वार्थेषु किं वा सर्वात्मनि ईश्वरे। अब प्रश्न हुआ कि ईश्वर तो ईश्वर है, तो ईश्वर क्या है महाराज? बोले सर्वात्मा जो है वो ईश्वर है, सर्वात्मनि ईश्वरे, यानी समष्टि उपाधि वाला चैतन्य ईश्वर है। तो सर्वात्मा कहने का मतलब समष्टि उपाधि, समष्टि उपाधि का मतलब हो गया आपकी जो उपाधि है वो भी ईश्वर की उपाधि है, क्योंकि आपकी उपाधि व्यष्टि उपाधि है, उसकी उपाधि समष्टि उपाधि है। यह अंतर है। तो सब की उपाधि होने के कारण सब में वह विद्यमानता है। सबकी उपाधि होने के कारण वह सभी में विद्यमान है। जैसे छोटे घड़ा, बड़ा घड़ा, कुल्हड़, कसौरा, प्याले, दीपक, जो कुछ भी बनाओगे वे सब अलग अलग नाम, अलग अलग रूप होंगे, लेकिन सब के सब मिट्टिका से बनी हुई होने के कारण मृत्तिका सर्वात्मा हो गई। मृत्तिका क्या हो गई? सर्वात्मा हो गई। सर्वात्मा माने घड़े की भी आत्मा, कुल्हड़ की भी आत्मा। बात समझ गए कि नहीं? घड़े की भी आत्मा और कुल्हड़ की भी आत्मा, दीवक की भी आत्मा, कसौरे की भी आत्मा, सुराही की भी आत्मा, हर चीज की आत्मा मृत्तिका हो गई कि नहीं? देख लो। इसीलिए वो जो मृत्तिका सर्वात्मा, इसी तरह परमात्मा सर्वात्मा, क्योंकि वो सबकी सत्ता है। सभी को सत्ता दिया हुआ होने के कारण वह सर्वात्मा है, और सभी को प्रकाशित करने के कारण वह सर्वभाषक है, सर्वावभाषक है वो। ईश्वरत्वम च जीवत्वम सर्वात्मत्वम च कीदृशम्। ईश्वर क्या है, जीव क्या है, और ईश्वर सर्वात्मा किस कैसे है, और जीव भी सर्वात्मा कैसे बन सकता है? देख लो, एक बात ख्याल रख लेना। जीव की अल्पात्मता, अल्पशक्तिता, ये बनी हुई है। समझ गए कि नहीं? जीव की अल्पात्मता, अल्पशक्तिता, ये बना हुआ है, स्वरूपता नहीं है। स्वरूपता ये अल्पात्मता और अल्पसत्ता, अल्पज्ञता, ये स्वरूप में नहीं है, लेकिन उपाधि के चलते हैं, इसलिए बना हुआ है। और इसको सर्वात्मा होने के लिए जो बना था उसका बिगड़ना जरूरी है। जीव जब तक नहीं बिगड़ेगा तब तक वो सर्वात्मा नहीं होगा। अब तुम क्या कहोगे इसको, बिगड़ना कहोगे कि सुधरना कहोगे? तो हम तो कह देंगे बिगड़ना है। जीव सुधरेगा कि बिगड़ेगा? जीव की जीव पना, उपाधि बिगड़ गई तो बिगड़ गया, वो बिगड़ गया तो क्या, जीव बिगड़ गया? बोलो, तो घट सुधर कर सकोरा बनेगा कि घट बिगड़ कर सकोरा बनेगा? इन घट फूटेगा ना तो घट कपाल बनेगा ना, तो घट कपाल जो बनेगा, घड़ा फूटने के बाद उस घड़े के टुकड़े होते हैं ना, उसको घट कपाल बोलते हैं संस्कृत भाषा में, नैयायिकों की भाषा में। घट ध्वंस ही घट कपाल के लिए कारण है। घट फूटे बिना घट कपाल बनेगा? तो घड़ा बिगड़ेगा कि सुधरेगा? घड़ा सुधर कर घटकपाल बनेगा कि घड़ा बिगड़कर घटकपाल बनेगा? तो हम तो ये कहेंगे कि उपाधि का नाश होना ही तो जीव का बिगड़ना है। उपाधि का बने रहना, जीव सुधरना। जीव सुधरना का मतलब है यह है, उपाधि का त्यागना नहीं है। हां, इतना ही जरूरी है कि उस उपाधि में तमोगुण की अधिकता के चलते हम ये कह दिया करते हैं कि जीव बिगड़ गया। सत्वगुण की अधिकता के चलते हम ये कह दिया करते हैं कि जीव सुधर गया। बात समझ में आई कि नहीं? दारू पीने के चलते हम कहते हैं कि वो व्यक्ति बिगड़ गया। दूध और फल के रस पीने के चलते हम कहते हैं कि वो व्यक्ति सुधर गया। तो क्या वो दूध और रस पीने लग जाए तो व्यक्ति ही नहीं रहेगा? व्यक्ति तो रहेगा, व्यक्ति तो रहेगा, लेकिन वो सुधरा हुआ व्यक्ति रहेगा। और दारू पीने लग जाएगा तो व्यक्ति ही नहीं रहेगा, रहेगा लेकिन कौन सा रहेगा? बिगड़ा हुआ रहेगा। उपाधि तो सुधरा हुआ व्यक्ति में भी है और बिगड़े हुए में भी है। मनुष्य के रूप में आइडेंटिफाई करोगे कि नहीं? बिगड़े हुए को, दारू पीने वाले को, ये मनुष्य है। जनगणना में दारू पीने वाले को पशु के कोटि में गणना करते हो कि मनुष्य के कोटि में गणना करते हो? है गणना में तो मनुष्य में करोगे ना। अच्छा, दूध और फल के रस पीने वाले को गणना तो मनुष्य के रूप में करोगे। तो दूध पीने लग गया तो मनुष्यता खत्म हो गई, ये बात नहीं। और दारू पीने लग गया तो भी मनुष्यता खत्म हो गई, ये बात नहीं है। गणना तो मनुष्य की कोटि में होगी। अब उसकी उपाधि खत्म हो जा वे, तब उसको न मनुष्य में गणना कर पाओगे, न सुधरे हुए मनुष्य के रूप में गणना कर पाओगे, न बिगड़े हुए मनुष्य के रूप में, मनुष्य के रूप में ही गणना नहीं होगी। इसी तरह उपाधि सर्वथा बाद होते ही जीव जीव के रूप में गणना नहीं हो सकती है। तो क्या फिर? तो वो परमात्मा ही है, इसलिए जीव ब्रह्म की एकता वेदांत में। अब ये किसी लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, इसलिए वह जीव स्वतंत्र मानते हैं। परमात्मा जिस तरह स्वतंत्र पदार्थ है, चैतन्य है, उसी तरह जीव स्वतंत्र व्यक्ति है, चैतन्य है। और भक्ति न करने के कारण ये बिगड़ा हुआ है, भक्ति कर जाए तो सुधरा हुआ है। इतना ही है, दारू पीने के कारण बिगड़ा हुआ है, दूध पीने लग जाए तो सुधर जाएगा। और क्या, विषय सेवन में आसक्त तो हो गया तो दारू पीने लग गया तो भगवान से दूर हो गया, और भक्ति रस पीने लग गया तो दूध पीने लग गया भगवान के नजदीक हो गया। तो भगवान के नजदीक पहुंचना, भगवान के सुख आनंद का उसको भी आभास मिलने लग जाएगा, उसकी छटा मिलने लग जाएगी, तो वहां भी आनंद होगा। तो हम जैसे कहते हैं क्या मदिरा पीते हो, दूध पी लो, क्या आनंद आता है, इसी तरह भक्ति में आनंद आता है। हम तो ये कहते हैं कि दूध ही पीना न पड़े, ये विचार करो ना भाई, है? दूध पीने के चलते ही, दूध के लोभ में आते ही वो मदिरा में पहुंच गया। वो भोक्ता बनना ही जीव की बिगड़ने की प्रक्रिया है, कर्ता बनना ही जीव की बिगड़ने की प्रक्रिया है। और जीव की कर्ता और भोक्ता भाव से निकल जाने का एक ही उपाय है कि उन उपाधियों के, जिन उपाधि से वो कर्ता बना था और जिन उपाधियों से वो भोक्ता बना था, उस उपाधि से वह अपना संबंध कट कर लेवे, हटा लेवे। ये उपाधि से मेरा कोई संबंध नहीं है। आज ही मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, थोड़ी चर्चा चल रही थी सुबह, हाँ, तो कहे कि महाराज भूल गए, बहुत भूलने की आदत पड़ गई। तो आप लोगों के भी भूलने की आदत है ना, है? ये तो सभी की है भूलने की आदत। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ईश्वर की बड़ी कृपा है। तो उनको थोड़ा सा असहज लगा होगा ये वाक्य, तो हमने उनकी फिर व्याख्या कर दी, उनकी असहजता निकल जाए। हम किस अभिप्राय से कह रहे हैं कि भूलना ईश्वर की कृपा है, किस अभिप्राय से कह रहे हैं? तो उसकी फिर हमको व्याख्या करनी पड़ी, स्पष्टीकरण, नहीं तो वो अन्यथा लेकर महाराज जी से सुबह सुबह दर्शन करने आए और आशीर्वाद ले चाहते थे, खूब याद हो जावे, ऐसे आशीर्वाद मिल जावे। महात्मा ने कहा कि भूलने की है तो ये ईश्वर की बड़ी कृपा है, यही आशीर्वाद है। तो उसका स्पष्टीकरण करना भी जरूरी होता है। तो हमने कहा उनको समझाया, देखो भाई, हम इतने ही चाहते हैं कि तुम अपने को नहीं भूलना, बाकी दुनिया को भूल जाओ तो कोई नुकसान नहीं है। तो हमने कहा तुम्हारी पत्नी तुमको क्या कहती है, है? पति कहती है ना, तुम मेरे पति हो, यही कहती है कि नहीं? और ये बात तुम भूल गए कि नहीं? पत्नी ने तुम्हारे बारे में जो कहा, तुम मेरे पति हो, ये बात तो तुम नहीं भूल रहे हो ना? भूल रहे हो? अच्छा, तुम्हारी बेटी ने तुम्हें कहा कि तुम मेरे पापा हो, है? भूल गए? नहीं भूले हो? तो तुम्हारे बाप ने कहा कि तुम मेरा बेटा है, तो भूल गए? नहीं भूले हो? तुम्हारा भाई ने कहा कि तुम मेरे भाई हो, तो वो भी नहीं भूले हो? तो संसार के लोगों ने जो कुछ भी तुम्हारे बारे में कहा, है? बहन ने भाई कहा, बेटी ने पापा कहा, पत्नी ने पति कहा, बाप ने बेटा कहा, है? मित्र ने मित्र कहा, ये सब कुछ तो भूल नहीं रहे हो तुम। तो इन लोगों का कहना तुम नहीं भूल रहे हो, तो फिर हमारा कहना क्यों भूल रहे हो? कोई प्रेमपुरी आने वाले महात्मा ने तुमको पति कहा? ताल बोलो है? किसी भी महात्मा ने तुम मेरे पति हो कहा? तुम मेरी पत्नी हो कहा? नहीं कहा ना? प्रेमपुरी में आने वाले कोई भी महात्मा ने तुम मेरे बेटे हो भी नहीं कहा होगा, मेरे भाई हो भी नहीं कहा होगा, मेरा मित्र हो नहीं भी कहा, ये कुछ नहीं कहा। अच्छा भाई, प्रेमपुरी में आने वाले महात्माओं ने तुम्हें क्या कहा तुम्हारे बारे में? कि तुम कूटस्थ हो, यही ना कहा है सभी ने? है? सभी लोगों ने, हर महात्माओं ने, तुम्हें महात्माओं ने यही कहा है कि तुम कूटस्थ हो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम कूटस्थ हो, अकर्ता हो, अभोक्ता हो। अब महात्माओं का कहना तुम भूल जाते हो, और पत्नी का कहना मैं तुम मेरे पति हो तो वो भूलते नहीं हो, तो ये तुम्हारी बदमाशी है और कुछ नहीं है। तो हम तो ये कहेंगे कि जैसे और सब कुछ भूल रहे हो, धीरे धीरे ये संसारी लोग जो तुम्हें कह रहे हैं वो भी भूल जाओ, और महात्मा का कहना मत भूलना, बस इतना ही है। महात्माओं ने तो तुम्हें स्त्री हो तो नहीं कहा है ना? कहा है महात्माओं ने प्रेमपुरी आश्रम में तुम्हें, तुम स्त्री हो, तुम महिला हो, तुम जनाना हो, ये तो नहीं कहा है, है? और महात्माओं ने तुम पुरुष हो ये भी नहीं कहा है। अब फिर जब तो फिर संसारियों ने कहा कि तुम स्त्री हो, तो तुम उसको भूलते नहीं हो कि अंतिम मरते दिन तक तुम कहीं भी लिंग लिखने के प्रसंग में तुम हमेशा मैं स्त्री हूं, जिससे भी परिचय दो तो मैं स्त्री हूं, मैं महिला हूं, मैं फीमेल हूं, मैं मेल हूं, मैं पुरुष हूं, ये कहते रहते हो। और महात्मा कहते रहते हैं तू कुटस्थ है, तू सत है, तू चित है, तू आनंद है। तो ये भूल जाना ही ईश्वर की बड़ी कृपा है। तो हम तो ये कहेंगे कि अभी तक संसारियों ने तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा उसका भूल जाओ। हाँ, तो अपने बारे में मत भूलना, शरीर के बारे में भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शरीर के बारे में स्त्री पुरुषता भूल जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, परंतु अपने को भूलते हुए शरीर को भी भूल जाओगे तो फिर व्यवहारिक सत्ता में बड़ा नुकसान आ जाएगा, तो फिर वो पागल है कहेंगे, है ना? लेकिन अपने को याद करते हुए व्यवहारिक सत्ता में के सब भूल जाओगे, शरीर, शरीर का धर्म आदि सब कुछ भूल जाओगे, शरीर से संबंधित संबंध को भूल जाओगे, तो तुम्हें पागल नहीं कहेंगे, तुम्हें समझदार कहेंगे। सुखदेव जी ने क्या किया? सुखदेव जी ने क्या किया? वेदव्यास जी क्या कहते हैं? तुम मेरे पुत्र हो, है ना? पुत्रेति तन्मयतया, तुम मेरे पुत्र हो, बेटा बेटा बेटा, कौन कह रहा है? वेदव्यास जी। सुखदेव जी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कि हां मैं तुम्हारा बेटा हूं, तुम मेरे बाप हो, है? कोई प्रतिक्रिया आई सुखदेव की तरफ से? नहीं आई। सुखदेव जी को तो ये पता ही नहीं कि मैं किसका बेटा हूं और मेरा कौन बाप है, ये दोनों चीज सुखदेव जी भूले बैठे हैं कि नहीं है? मैं किसी का बेटा हूं, कोई मेरा बाप है, ये दोनों चीज सुखदेव जी भूल बैठे हैं, उनको उसका भान ही नहीं है। इसी तरह मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं, ये भी उनको भान नहीं है, है? दिगंबर होकर चले हुए हैं, स्त्री पुरुष का भान नहीं है। ब्रजवालाएं स्नान कर रही हैं और सुखदेव जी को आते हुए देखा, उनको कोई मतलब नहीं, नहीं स्नान कर रही हैं। अब वेदव्यास जी को आते ही उन्होंने कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, भागवत का प्रसंग। तो क्यों भाई ऐसा हुआ? वेदव्यास जी ने पूछ लिया, हाँ, जवान मेरा बेटे को देखकर तुम लोग लज्जा नहीं करते और मैं बूढ़े को देखकर लज्जा करते हो, है? क्या बात है? बोले महाराज, उसकी समदृष्टि होते ही हमारी भी समदृष्टि हो गई। देख लो, उनकी समदृष्टि होने पर हमारी भी समदृष्टि हो गई, और जहां आपकी विषम दृष्टि है इसलिए हमको भी विषम दृष्टि करना पड़ा, आपकी विषम दृष्टि होने के चलते हमको विषम दृष्टि करना पड़ा। आप ये छोटा सा दूध पीता हुआ बच्चा, उसमें वो भाव नहीं है, स्त्री पुरुष का भाव नहीं है, तो उस बच्चे के सामने आप भी उस भाव में बंधते नहीं हो, बंधते हो है? छोटा दूध पीता हुआ बच्चा, उस बच्चे में स्त्री पुरुष का भेद का भाव नहीं रहता है, तो आप भी उस बच्चे के सामने उस भेद का परित्याग कर देते हो, करते हो कि नहीं? उसके सामने नंगे होने में आपको कोई संकोच होगा? दूध पीते हुए बच्चे के सामने नहीं होता, भेद खत्म हो गया, उसने भेद नहीं किया तो आप भेद नहीं करोगे। और वही जवान जब होता है तो उसके पास सामने भेद आता है तो फिर आप विभेद करने लग जाओगे, है? पांच वर्ष पहले उसके सामने आपने भेद नहीं किया था और पांच वर्ष के बाद आप खुद भेद करने लग जाओगे। कारण क्या? तो उसमें भेद आ गया तो आप भी भेद करोगे। तो ईश्वरत्वम च जीवत्वम, जीवपना क्या है, कैसे हुआ ये जीव? जानीया तत्कथम जीव किम तज ज्ञानस्य साधनम। जीव अपने पारमार्थिक स्वरूप को, सर्वात्म भाव को, सर्वसत्ता भाव को, सर्वचित्ता भाव को वो कैसे जाने, किस प्रक्रिया से जाने? क्या जीव हमेशा जीव ही रहेगा कि जीव की ये जीवपना अनित्य है? तो वेदांत की दृष्टि में जीव की जीवपना अनित्य है, क्योंकि उपाधि अनित्य है, इसलिए जीव की जीवपना अनित्य है। जानी या तत्कथम जीव किम तद ज्ञान से साधनम, उस ज्ञान का साधन क्या है, कौन से ज्ञान के द्वारा जीव अपने को सर्वात्म रूप में जान पाएगा, उसकी उपाधि का बाद होगा। कौन से ज्ञान के द्वारा, घट ज्ञान के द्वारा कि पट ज्ञान के द्वारा? घट ज्ञान पट ज्ञान ये जो अपराविद्या है, उस अपराविद्या के द्वारा जीव अपने आप को सर्वात्म रूप में नहीं जान सकता। जीव को अपने आप को सर्वात्म रूप में जानने के लिए, निश्चय करने के लिए पराविद्या की आवश्यकता है। फलव्याप्ति के रूप में जीव अपने आप को सर्वात्म रूप में नहीं जान सकता है, वृत्ति व्याप्ति के रूप में ही जीव अपने आप को सर्वात्म रूप में जान सकता है। तो ये उपाय भी बताना है, प्रश्न यहां उपस्थापित की गई है। जानीयात तत्कथम जीव किम तद ज्ञान से साधनम, ज्ञाना तस्य फलम किंच। अपने आप को कुटस्थ और सर्वात्म भाव को जानने के बाद उस ज्ञान का फल क्या होगा, उपलब्धि क्या होगी? हाँ, एक महात्मा वेदांत पढ़ने लग गए, महाराज हमको वेदांत पढ़ाइए। तो हमने कहा कि क्या करोगे वेदांत पढ़कर? बोले आपसे वेदांत पढ़ेंगे तो फिर हम भी कथाकार बनेंगे। अच्छा भाई, तुम कथाकार बनकर क्या करोगे? बोले कथाकार बन जाएंगे तो बढ़िया खाने को मिलेगा, सब लोग नमस्कार करेंगे, पीने को मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। अब कथाकार न बने, जब तक कथाकार नहीं बने तो कहीं जाओ आश्रमों में कमरा नहीं मिलता है, कथाकार बन के जाओ तो रहने के लिए कमरा बढ़िया। कथाकार बनते ही मान सम्मान सब कुछ, और कथाकार नहीं बने तो फिर खड़िया पलटन है। तो हम ये चाहते हैं कि हम भी कथाकार बने, और इतने प्रयोजन के लिए तुम कथाकार बनना चाहते हो और उसके लिए वेदांत पढ़ना चाहते हो तो ये तो कोई उत्तम चीज नहीं है। उसका फल क्या है? ज्ञान तस्य फलम किं स्यात्, एकत्वम च कथम भवेत। ज्ञान का फल है एकता। ज्ञान का फल क्या है? एकता, एकत्व। हाँ, विभेदता ये ज्ञान का फल नहीं है। जीवात्मा परमात्मा की जो एकता ही ये ब्रह्म विद्या का फल है, प्रयोजन है। सर्वज्ञ सर्वकर्ता च कथम आत्मा भविष्यति। ये जीवात्मा सर्वज्ञ सर्वकर्ता कैसे होगा? तो बोले छोटी उपाधि को छोड़कर बड़ा उपाधि ग्रहण करता है तो सर्वज्ञ सर्वकर्ता बनेगा। बात समझ गए कि नहीं? छोटी उपाधि को छोड़कर बड़ा उपाधि को ग्रहण करता है तो सर्वज्ञ सर्वकर्ता बन जाएगा। और उपाधि को छोड़ जाएगा तो वह कुटस्थ असंग हो जाएगा, वो सर्वज्ञ सर्वकर्ता नहीं बनेगा, वो केवल ज्ञप्त्री मात्र रहेगा। ये वेदांत की प्रक्रिया है। ब्रह्म सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, ब्रह्म सर्वज्ञ नहीं होगा और सर्वकर्ता नहीं होगा, ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वकर्ता होगा, जीव सर्वज्ञ नहीं होगा और सर्वकर्ता भी नहीं होगा, जीव अल्पज्ञ अल्पकर्ता होगा। जीव अपनी छोटी उपाधि बड़ी उपाधि में मिला देता है तब जीव भी सर्वज्ञ सर्वकर्ता बन जाता है बड़ी उपाधि के चलते, और उपाधि को छोड़ देता है तो सर्वकर्ता सर्वज्ञ सर्वकर्ता नहीं बनता है, केवल ज्ञप्त्री मात्र रहता है, ज्ञान मात्र रहता है, चिन्ह मात्र रहता है, आनंद मात्र रहता है, अद्वितीय रहता है। सर्वज्ञ सर्वकर्ता च कथम आत्मा भविष्यति शिष्यम प्रति इत्थम। इस तरह यह वेदांत विचार के सारे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का जो सार है वो शिष्य नहीं यहां गुरु के सामने प्रश्न के रूप में विचारणीय प्रश्न के रूप में रखा है, और इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के माध्यम से जो कुछ भी विचार किया जाएगा यहां उपस्थापित ये सारे विकल्प के बारे में ही विचार किया जाएगा। पृच्छम पृच्छन्तम् भक्तमारभते गुरुः, ऐसे शिष्य जब इस तरह पूछता है तो उसके उत्तर देने की इच्छा से आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी इस तरह उपदेश करना आरंभ करते हैं। उपदेश का आरंभ विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, ये उपदेश का आरंभ कल से मूल श्लोक की व्याख्या। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।